श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। सभी हाथों से तालियों का सेवा करते हैं। Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Yete Namine Nama Om Krishna Prasthaya माते बाते नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारी में निर्विशेष सुन्नवादी पाशदादिशतारी में नामस्ते। सब लोग बोलिए गौरवाणी प्रचारी में निर्विशेषासुन्नवादी पाशदादिश जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव शादि गौर भक्त वृंद जय कन्या प्रभु नित्यानंदा श्रिया द्वैत गदाधर शिव जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद गदाधर शिव शादे गौर भक्त वृंद गदाधर शिव शादे गौर भक्त हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Yeah. श्रील प्रभुपाद के जय ओम विष्णुपाद परमहंस परमकाचार्य स्वस्तोत्तर सदंगे सभय चरणारविंद बच्चांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के ISKCON DBT FOUNDER ACHARYA SAVIOR OF THE WHOLE WORLD MOST MERCIFUL A.C. BHAKTIVEDANTA SWAMI SHRILA PRABHUPADA KE JAYEM VISHNUPADA PARMAHANSA PARVATACHARYA SPRASHTOTAR SATIT VANGRE BHAKTI SIDDHANTA SARKATI DASATI VENDIYA SWAMI MARAJA KE NAMACHARYA SHRILA HARIDASA अनंत कोटि वैष्णव भक्त बिंद के प्रेम से कह श्री कृष्ण से कन्या प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाषदि देव भक्त बृंद के श्री श्री राधा गिरिधारी गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की श्री श्री राधा गिरिधारी जी की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की शिष्य गोमिताई की जंत्रा श्रीमद् भागवतम महापुराण की और ग्लोरी श्री राय संभव दियो थे और ग्लोरी श्री संभव दियो थे और ग्लोरी श्री राय संभव दियो थे श्री गुरुंग गौरंग अवधिष्ठ श्रील प्रभुपाद देवर ऑफ द होल वर्ल्ड मोस्ट मर्सीफुल एसी भगवान स्वामी श्रील प्रभुपाद गौर हरि प्रेमानंदे गौर हरि प्रेमानंदे गौर हरि प्रेमानंदे हरी हरी बोल हरी हरी बोल हरी हरी बोल
बहुत धन्यवाद हरे कृष्णा
ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयाम् उदीरये नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिराभवती नैष्टकी भक्तिराभवती नैष्टकी भक्तिराभवती नैष्टकी
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण स्कंद दस अध्याय ग्यारह श्लोक श्रृंखला 45। तो आइए इस श्लोक का उच्चारण करेंगे। श्लोक से श्लोक में आए कुछ शब्दों का उच्चारण करेंगे, श्लोक से परिचित होने का प्रयास करेंगे और उम्मीद करते हैं सेवा के माध्यम से गुरु वैष्णव प्रभुपाद जी प्रसन्न हो जाए। तो सभी मेरे बात बोलिए, तौ वत्स पालको भूत्वा सर्वलोक एक पालको। साप्रता असो गोवत्सान चार्यांतो वचेरतो। तौ वत्स पालको भूत्वा वत्स पालको भूत्वा सर्वलोक एक पालको। सर्वलोक एक पालको। सर्वलोक एक पालको। सा प्रातः असो गोवत्सा सा प्रातः असो गोवत्सा चार्यांतो विचेरतो। चार्यांतो विचेरतु चार्यांतो विचेरतु। तौ वत्स पालको भूत्वा सर्वलोक एक पालको। सप्रात आसो गोवत्सा चार्यांतो विचेरतु। तौ वत्स पालको भूत्वा सर्वलोक एक पालको। सप्रातरसो गोवत्सा चार्यांतो विचेरतु चार्यांतो विचेरतु चार्यांतो विचेरतु। श्री श्री राधा गिरिधारी जी की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की श्री श्री गोनिताय की बोलिए। Thank you.
चारियंतो विचेरतो सर्वलोकेषु भोगत्सान्तो विचेरतु भोगस्वतालको भूत्वा
माताजी वैष्णवी
सर्वलोकैकपालको सत्रातरतो भुवत्सान् चार्यान्तो विचेरतु भुवत्सपालको भूत्वा सर्वलोकैकपालको सत्रातरतो चार्यान्तो विचेरतु भुवत्सपालको भूत्वा सर्वलोकैकपालको सत्रातरतो भुवत्सान् चार्यान्तो विचेरतु भुवत्सपालको भूत्वा सर्वलोकैकपालकोत्सान् चार्यान्तो विचेरतु भुवत्सपालको भूत्वा सर्वलोकैकपालको सत्रातरतो भुवत्सान् चारयन्तो विचेरतु
तो कृष्ण तथा बलराम
वत्स
वत्स पालको मानो बछड़ों की रखवाली करने वाले भूतवाल बनकर सर्वलोक एक पाल को यद्यपि वे संपूर्ण ब्रह्मांड के जीवों के पालन करता है सप्रातः आसो सुबह का नाश्ता करके अभी भगवान सुबह का नाश्ता किए 8:30 के बीच में
गोवत्सान
सारे बछड़ों को चार्यान्तो चराते हुए
विचेरतु
इधर उधर विचरण करने लगे अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा Savior of the whole world, the most merciful, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Asur ko maarne ke baad, Krishna tata Balram ne apna subah ka nashta कलेवा किया और बछड़ों की रखवाली करते हुए इधर उधर टहलते रहे। भगवान कृष्ण तथा बलराम ने जो संपूर्ण सृष्टि के पालक हैं, ग्वाल बालों की तरह बछड़ों का भार संभाला। परित्राणाय, तात्पर्य यह है, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृताम। इस भौतिक जगत में कृष्ण का नित्य कार्य था दुष्कृतों को मारना, इससे उसके दैनिक कार्य में बाधा नहीं आती थी, क्योंकि यह नित्य कर्म था। जब वे यमुना के तट पर बछड़े चराते तो नित्य ही ध्यान देना, प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिख रहे हैं, ये आचार्यों के टीका पे आधारित प्रभुपाद जी ये तात्पर्य लिखते हैं। तो ये जो लाइन है थोड़ा ध्यान दीजिए, जब वे यमुना के तट पर बछड़े चराते तो नित्य ही दो तीन घटनाएं घटती, किंतु गंभीर होने पर सभी असुरों का वध उनका नित्य कार्य बन गया था। तो यहां पे भगवान कृष्ण वस्त्र चरण कर रहे हैं और कहते हैं कि बछड़ों को ऐसे इधर उधर चराते हुए टहलते टहलते दो या तीन घटना घटती है और उसके बाद उनको पता लगता है अभी हमें नाश्ता करना है, नहीं तो खेलकूद में इतने मस्त होते हैं। तो योग माया जो है ऐसा एक सुंदर रचना बनाते हैं कि अब कृष्ण खेलते ही रहेंगे तो कमजोर हो जाएंगे, पर खेल में इतने रचे पचे रह जाते हैं, आवेश हो जाते हैं कि उन्हें ये भी पता नहीं अब थोड़ा बहुत खाना भी है। तो एक असुर को बेचते हैं योग माया, तो योग माया असुर को बेचते हैं तो लड़ाई होता है, सारे ग्वाला मिलकर कृष्ण का जय जयकार करते हैं, फिर कहते हैं कृष्ण हमें भूख लगा, तब बोलते हैं हाँ चलो नाश्ता करते हैं। तो इस प्रकार से दोपहर के समय फिर शाम को, तो ये आज के श्लोक में प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं। एक बार अनुवाद को फिर से हम उच्चारण करेंगे, आप मेरे बाद एक साथ उच्चारण कीजिए। असुरों को मारने के बाद क्षमा करें, असुर को मारने के बाद कृष्ण तथा बलराम ने अपना सुबह का नाश्ता कलेवा किया और बछड़ों को रखवाली करते हुए वे इधर उधर टहलते रहे। भगवान कृष्ण तथा बलराम ने जो संपूर्ण सृष्टि के पालक हैं, ग्वालों की तरह बछड़ों का भार संभाला। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोदिष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च।
श्री रूपं सागर जातं सजना रघुनाथान्वितां सजीवं साधवैतम सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादा सगना ललिता श्री विशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्याने गौरद्विषये नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशाली गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण ये वैष्णव संतों का परम धन है। श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता परमहंस चक्रचूड़ामणि श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज जी उन आनंद कंद वृंदावन चंद्र के युगल चरणों का स्मरण करते हुए महारानी भगीरथ जी के धवल धारा में आमरण अनशन व्रत परायण उन परीक्षित महाराज जी को प्रभु के दिव्य चरित्रों का लीलाओं का वर्णन करते हुए यहां पे वत्स चरण का सुंदर वर्णन कर रहे हैं। यह गोकुल वृंदावन का सुंदर यहां पे दर्शन हमें प्राप्त हो रहा है। किस प्रकार से कृष्ण प्रातः नित्य कर्म करते हुए अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ गोपों के साथ प्रातः वह वक्ष चरण करने जाते हैं। ये पौगंड लीला है। पौगंड का तो तय 5 साल से कम है। कौमार लीला अब प्रारंभ नहीं हो चुकी है। मां यशोदा भयभीत है कि कृष्ण जो है अब भाग जाएंगे दूर जाएंगे तो कृष्ण से कहते हैं कि बड़ा सावधानी के साथ चलना और बलराम जी सुनो आप बड़े भैया हो इनके ध्यान रखना ये इधर उधर नटखटपन करते हुए इधर उधर भागे नहीं। तो बलराम जी कहते हैं मां चिंता मत करो मैं हूं। हां मंडली भद्र ये सब सीनियर होते हैं। मंडली भद्र से कहते हैं कि ठीक है कृष्ण का ध्यान रखना सारे ग्वाल जो है ग्वालबाल जो है मंडली भद्र हो, स्टोक कृष्ण है, मधुमंगल है, ये सब प्रातः रोज सुबह नंद भवन में आ जाते हैं और कृष्ण को उठाते हैं। कृष्ण को देखे बगैर वह रह नहीं सकते हैं। कृष्ण इतने प्यारे हैं कि कृष्ण का दर्शन शाम को किया, माँ यशोदा सबको धक्का मार के घर से भगाया, चलो अब सोने का समय हो गया, कृष्ण बलराम को आराम करना है। सारे गोप जो हैं विरह का अनुभव करते हैं, हाय अब कृष्ण का दर्शन कब होगा। कृष्ण के साथ जो आदान प्रदान होता है इतना मधुर होता है कि कृष्ण से बिछड़ने का मन नहीं कर रहा है। पर माँ यशोदा सबको धक्का मार के भगाते, जाओ घर घर जाओ, अपने अपने घर में जाओ, सो जाओ और इनको भी सोने दो। तो कृष्ण और बलराम जी का रात भर सपने में उन्हीं का आवेश हो जाते हैं। यह आवेश मई आवेश मनो ये माम, कृष्ण के अलावा और कुछ सोच नहीं सकते हैं ग्वाल बाल। और ये गोपियां भी, जितने भी गोपियां हैं उनके माँ भी सोचते हैं कि ठीक है बेटा, कल सुबह प्रातः जल्दी उठाऊंगा, तब उठकर आप सब जाओ। तो प्रातः जैसे ही हो जाते हैं तो सब उठकर ही कृष्ण कृष्ण कह के उठ जाते हैं और स्नान वान करके तुरंत भागते हैं, ब्यूगल बजाते हैं, बोम्पू बजाते हैं, डमडम बजाते हैं और कृष्ण से कहते हैं कि कृष्ण कृष्ण उठ जाओ। और माँ यशोदा कृष्ण का बहुत सुंदर श्रृंगार करती है और श्रृंगार करने के बाद अब कृष्ण तैयार हो जाते हैं। हाँ याद रखना, माँ यशोदा कहती है कि कृष्ण ज्यादा दूर मत जाना। अब आप सबको पता है कि कृष्ण अब जो गोकुल है वो छोड़ दिया है। अब कहाँ पे आ गए हैं कृष्ण? अब कृष्ण कहाँ पे आ गए हैं? वृंदावन आ गए हैं, जिसे महावन कहते हैं। तो अब कृष्ण जो है गोवर्धन के निकट आ चुके हैं, इसको नंदग्राम कहते हैं, नंदीग्राम भी कहते हैं। तो यहाँ पे कृष्ण आए हैं पर अब 3 साल के हैं। कृष्ण कहते हैं माँ से, माँ मुझे गोचरण करना है, नंद महाराज जैसे, बाबा जी जैसे, नंद बाबा जैसे मुझे गाय गोचरण करना है। मैं बोलता नहीं, आप गोचरण नहीं कर सकते, थोड़ा अभ्यास करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, आपको प्रैक्टिस करना होगा। गोचरण करने से पहले थोड़ा वत्स चरण करो, बछड़े का आप पालन करो। तो सारे बछड़ों को लेकर जाते हैं, बछड़ों को एक के बाद छोटे छोटे बछड़े सब प्यारे पर। माँ यशोदा कहती है कृष्ण से, देखो कृष्ण अब आप जा रहे हो बड़े सावधानी के। हाँ हाँ माँ चिंता मत करो, बड़े सावधानी के साथ हम रहेंगे, कोई तकलीफ किसी को नहीं मिलेगा, चिंता मत करो। मंडली भद्र, बलराम, स्टोक कृष्ण, श्रीदाम, सुबल, इन सबको साथ में माँ यशोदा जो है भेजती है, जाओ जाओ इनके साथ रहो। और सारे गोप भी कहते हैं वाह कृष्ण हमारे साथ हैं, कृष्ण हमारे साथ हैं। कल रात के बाद आज फिर से उनका दर्शन हुआ, आज कृष्ण और अच्छे लग रहे हैं, कल के भांति कृष्ण आज और अच्छे लग रहे हैं। आज जो कृष्ण है वो कल के कृष्ण से और अच्छे लग रहे हैं, ये कृष्ण का स्वभाव है। ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म संहिता में बहुत सुंदर बात कहते हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यन पुराण। ये आदि पुरुष है, सबसे पुरातन है, नव यौवनम च। कृष्ण हर पल यौवन और ताजा और पवित्र और सुंदर लगते हैं। अब जो कृष्ण यहां दिख रहे हैं अब थोड़ी देर में और अच्छे और ताजा और यौवन लगेंगे। यह है भगवान का दिव्य स्वरूप। सच्चिदानंद विग्रह भगवान का जो है, हमारे जो कलेवर है, हमारे जो शरीर है जो कि असत, ये जड़ तत्वों से बना हुआ है, भूमि अपो अनल वायु कम इत्यादि से बना हुआ शरीर जैसा नहीं है, जो समय के साथ साथ बदलता है फिर बाद में खत्म हो जाता है, सड़ता है। पर भगवान का शरीर कैसा है? नव यौवनम च, भगवान कोई रूप में आए पर नव यौवनम च, भगवान कृष्ण राम नरसिंह वरहा या वामन रूप में आए, वह सुंदरता उनका जो है बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। जो सौंदर्य कृष्ण का आज है, भक्त जो सालों से गिरिधारी मंदिर में आते हैं वो अब कृष्ण का दर्शन करते हैं, बोलते थे कि कृष्ण पहले जो सुंदर थे तो थे सुंदर, पर आज पहले के भांति और ज्यादा सुंदर हैं। या रास बिहारी जी के दर्शन जो करते हैं, सालों पहले 40 साल पहले जो भक्त शुरू के समय में प्रभुपाद जी के साथ सेवा करने आए थे वो दर्शन करते हैं, फिर 40 साल के बाद पुनः वे रास बिहारी का दर्शन करते हैं तो कहते हैं कि रास बिहारी जी पहले से बहुत सुंदर लग रहे हैं। यह है दिव्य भगवान का स्वरूप। नव यौवनम च, भगवान और ताजा लगते हैं, भगवान और नौजवान लगते हैं। हम अभी नौजवान हैं फिर हम कहते हैं कि हम हमेशा नौजवान रहेंगे, पर यह संसार है, सर 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 इति संसार, नहीं मैं जवान हमेशा रहूंगा ऐसा करके हट लगाते हैं। पर क्या होता है कि धक्का दिया जाता है, काल आता है, बोलते आप नौजवान से आप मध्यस्तर अवस्था में आओगे और मध्यस्तर से मैं बूढ़ा नहीं होना चाहता हूं, ऐसा करके हम प्रयास करते हैं, पर पहला नोटिस आ जाता है, सफेद बाल कान के निकट। दशरथ महाराज जी को 7000 वर्ष के राज्य संभालने के बाद जब कान के निकट वे पहले सफेद बाल देखे तब कहा कि अब राम को सिंहासन पे आरूढ़ करूंगा और कल राम जी का राज्य अभिषेक किया जाएगा। यह है दशरथ महाराज जी, पहले सफेद बाल देख लिया था। और आज आपके बारे में नहीं, आप सब अच्छे भक्त हैं, और जो मुंबई इत्यादि में है वो बाल सफेद देखते हैं तो तुरंत, तो अपना कार्रवाई शुरू कर देते हैं, मैं जवान हमेशा रहूंगा, तो यहां से काला रंग लगाएंगे, वहां से काला रंग। पर दशरथ महाराज ने कहा राज अभिषेक किया जाएगा, पर प्रभु श्री राम जी का राज्य अभिषेक कल करेंगे वो कहा, और कल 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 करते करते उनका काल आ गया। शिक्षा यह है कि शुभ कार्य में देरी नहीं, कल करे सो आज, आज करे सो अब, पल पल में पता नहीं कब आएगा काल। तो सर 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 करके हम कहते हैं कि हम जवान थे और रहेंगे, पर बुढ़ापा आ गया। गिरिधारी जी 1995 में यहां पे आए थे तो गिरिधारी जी के समक्ष बहुत सारे भक्त आए, जवान थे, वृद्ध हुए, वृद्ध से उनका तिरुभाव भी हो गया, पर गिरिधारी जी हैं और यौवन बनते जा रहे हैं। यह है भगवान का दिव्य सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप। हम जवान आए थे अब वृद्ध हो गए, पर गिरिधारी जी बल जगन्नाथ जी और सुंदर लग रहे हैं। और सुंदर लग रहे हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यन पुराण नव यौवनम चा, वो न हमेशा नए लगते हैं। ओ ये गिरधारी जी कल जो देखे थे वैसे नहीं लग रहे, आज कृष्ण और अच्छे लग रहे हैं। हाँ 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 बलराम जी और श्लोक कृष्ण मंडली भद्र सब कहते हैं हाँ कृष्ण पहले से बहुत सुंदर और अच्छे लग रहे हैं। ये है कृष्ण, हमेशा अच्छे लगते रहते हैं, हमेशा और सुंदर लगते रहते हैं। तब माँ कहते हैं कृष्ण से, कृष्ण तो अभी छोटे हो, और ध्यान रखना बलराम जी जहां तक मेरी नजर जाती है ये जो महल है, आप अभी भी जाओगे वृंदावन में, आप जाओगे परिक्रमा करने जाओगे तो देखोगे कि नंद भवन जो है एक पहाड़ के ऊपर है। और माँ कहती है जहां तक मेरी नजर में आप रहोगे कृष्ण वहीं तक आप खेलना, और उसके बाहर आप मत जाना। तो कृष्ण बलराम सब निकलते हैं, और जैसे कृष्ण निकलते हैं तो माँ यशोदा रोने लगती है, नंद महाराज रोने लगते हैं, जितने भी गोपियां हैं वो सब रोने लगते हैं। और कृष्ण बछड़ों को लेकर चलते हैं और नाचते गाते जा रहे हैं, और सारे गोपियां कृष्ण के पीछे पीछे आ रहे हैं, और कृष्ण तेज गति से अपने ग्वाल बालों के साथ भागते हैं। यह है प्रातः काल का लीला। कृष्ण के साथ साथ कौन कौन आते, रत्रक और पत्रक। माँ यशोदा उनके पोटली में, कृष्ण तो क्या है राजा के बेटे राजकुमार है, तो अपने पोटली में वे पूरी लेकर जाते हैं, पूरी के साथ साथ गर्मी के मौसम में आम रस लेके जाते हैं, श्रीखंड लेके जाते हैं, और दूसरे पोटली में और सारे मिठाइयां रसगुल्ला संदेश और रस मलाई और रबड़ी लेकर जाते हैं। रत्रक एक तरफ लेके जाते हैं, और पत्रक जो है वो धीरे से एक सोने का एक एक बक्सा खोलता है जिसमें मोती और यों से सजा हुआ है, नीले पीले लाल, वो खोलते हैं और कृष्ण को एक मीठा तांबुल दिलाते हैं। तांबुल आप जानते हैं क्या है, तांबुल जानते हैं क्या है, पता है ना तांबुल क्या होता है? एक पत्ता होता है जो हमको नहीं खाना चाहिए, वो पान बोलते हैं उसको, पान में अलग अलग करके ऐसे गोल ऐसे करके तांबुल देते हैं, कृष्ण खाते हैं और पिचकारी छोड़ते हैं। वो कृष्ण के लिए लागू है क्योंकि कृष्ण भोगता है। और आप जाओगे जयपुर में श्री श्री राधा गोविंद जी के दर्शन करोगे तो प्रातः आपको मक्खन मिलेगा, मिश्री मिलेगा और तांबुल भी मिलेगा। तो हम भक्त लोग जो संकल्प लेते हैं ये नहीं समझे कि ये महाप्रसाद है सर से लगाए, और तो महाप्रसाद यद्यपि है हमारे लिए अनुकूल नहीं है, ये हमारे गुरु हमारे आचार्य और शास्त्र कहते हैं, इसलिए हम इस तांबुल को आदर करके औरों को दे देते हैं जो लोग इसको सेवन करना चाहते हैं, पर हम भक्तों के लिए ये नियम के विरुद्ध। तो तांबुल लेकर जाते हैं कौन, पत्रक, और इस प्रकार से कृष्ण चलते जाते हैं चलते जाते हैं, और सारे ग्वाल बाल बड़े आनंद में खेलते रहते हैं। पर खेलकूद में इतने रचपच जाते हैं, उनका खेल क्या है, कोई मोर को देखते हैं तो कृष्ण के सामने वो मोर बनने का प्रयास करते हैं, मोर देखो मैं कैसे नाच रहा हूं, तो उनको नाचते देख के कृष्ण भी मोर जैसे नाचने लगते हैं, सब ग्वाल बाल मोर जैसे नाचते। या एक मेंढक को देखते हैं तो कृष्ण भी मेंढक जैसे बोलते देखो मैं कितना अच्छा जंपिंग करता हूं, तो सब बोलते वाह वाह ताली बजाते हैं। ये बच्चों का खेल है, 3 साल का बच्चा ऐसे खेल खेलता है और क्या करेंगे, है ना। तो इस प्रकार से खेलते हैं। और बंदर को देखते हैं तो बंदर जैसे सभी आवाज करते हैं और ऊंचा छलांग भी मारते हैं। फिर कोयल को देखते हैं कू कू करते हुए तो सारे ग्वाल बाल वहां पे कू कू करने लग जाते हैं। तोता को देखकर तोते जैसे आवाज करने लग जाते हैं। यह है वृंदावन जहां पे कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ आनंद में रहते हैं और कहते हैं यह आनंद हमारे लिए भी उपलब्ध है। आप क्यों इस भौतिक जगत में सड़ रहे हो, जल रहे हो, मुरझा जा रहे हो, नष्ट हो रहे हो? जागो, 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 जीव जागो, जीव जागो। वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बनकर आके क्या कहते हैं, जीव जागो गोरा चांद बोले, को तो निद्रा जाओ रे माया पिशाची रकोले। जागो, भगवान के धाम में भगवान के साथ लीला करने में कितना आनंद है या नहीं? अरे ग्वाल बाल इतने आनंद में है, इतने मस्त है कि वो भूखे हैं, उन्हें पता भी नहीं है। तब जाके जो योग माया है वो एक असुर को बेचते हैं, जाओ। तब असुर को देखते ही कृष्ण जो है परित्राणाय साधु नाम, सारे ग्वाल बालों को आनंद प्रदान किए हैं। बोलते हैं परित्राणाय साधु नाम हो गया, ये असुर आया है मेरे ग्वाल बालों को कष्ट देने के लिए, अब मैं करता हूं दूसरा सेवा। वो क्या है, विनाशायश्च दुष्कृताम। उस असुर को मारते हैं। जैसे असुर को मारते हैं तो सारे ग्वाल बाल जो है मिलकर एक साथ ताली बजाते हैं और आकाश से जितने भी देवी देवता पुष्प इत्यादि का वर्षा करते हैं और एक साथ ऊंचे स्वर में चिल्लाते हैं, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कृष्ण चंद्र भगवान की। ऐसे बोलकर तब बाल बालों को याद आता है, अरे कृष्ण खोलो खोलो भूख लगी है, आज क्या बनाया माने। तब खोलते हैं, पूरी खाते हैं, चपाती खाते हैं, दही मिष्टी दही और रबड़ी खाते हैं। ऐसा ही एक घटना लगभग 40 साल पहले घटी। प्रभुपाद जी आंदोलन को शुरू ही कर चुके थे और आप सबको पता है कि प्रभुपाद जी के जो शुरू के समय जो शिष्य थे गिने चुने 10-15 थे और प्रभुपाद जी स्थापन किए इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये होते होते अभी 50 साल होने को आया है। कितने साल होने को आया, 50 साल। आने वाला जो साल है, नहीं 2016 जो है वो इस्कॉन स्थापन करके कितने साल हो जाएंगे, 50 साल, गोल्डन जुबली माना जाएगा। बहुत ही भव्य रूप में हम सब इस गोल्डन जुबली इस्कॉन का मनाएंगे। तो प्रभुपाद जी शुरू किए थे, उनके साथ कीर्तनंद स्वामी और दो तीन भक्त थे, हयग्रीव प्रभु और दो तीन भक्त थे, हंसदूत इत्यादि। तो प्रभुपाद जी का मालिश कर रहे थे, लगभग 10 बजे का समय था, प्रभुपाद जी का मालिश कर रहे थे। प्रभुपाद जी आराम से बैठे थे, मुस्कुरा रहे थे। अब कहा कि रुक जाओ, ये शुरू के दिन है और ये सब अमेरिका के नौजवान जो हिप्पी थे प्रभुपाद जी के सानिध्य में हैप्पी हो गए और पहली बार अपने जीवन में सच्चा व्यक्ति को देखे जो अपना उनका शोषण नहीं किया या उनको ठग कर उनसे लाभ नहीं लिया, अपितु उनको उनके हित के लिए कुछ मार्गदर्शन प्रदान किए। एक सच्चा व्यक्ति को आज तक वो देखे नहीं, उनके जीवन में केवल धोखा वो खाए, अपने माता पिता के द्वारा, अपने भाई बहनों के द्वारा, अपने दोस्तों के द्वारा सबने ठगा है। आज पहली बार जीवन में कोई, कुछ 2 या 3 महीने बीत चुके हैं और उस वक्त प्रभुपाद जी से उनका घनिष्ठ प्रेम बढ़ जाता है। कहते हैं कि प्रभुपाद जी जो भी है हम उनके लिए अपने जान दे देंगे और प्रभुपाद जी कहते हैं रुक जाओ, अब मैं इसी वक्त अमेरिका छोड़ के जाऊंगा, अब मैं इसी वक्त आप सबको छोड़ के जाना चाहता हूं। अब देखिए ये सब नए नए शिष्य हैं, इनके जीवन में पहली बार एक ऐसा गुरु मिला, ऐसा व्यक्ति मिला है और वे अपना जीवन देना चाहते हैं, उनके लिए सब कुछ करना चाहते हैं। और प्रभुपाद जी कहते मैं अब तुरंत इसी बस निकल जाऊंगा। तो सबके आंखों में आंसू आने लग गए और प्रभुपाद जी ने कहा मैं इसी वक्त अभी अभी तुरंत निकल जाऊंगा और मैं यहां ठहर नहीं सकता हूं, क्योंकि प्रभुपाद जी जो है नित्य लीला में प्रविष्ट कर चुके थे। किसके नित्य लीला में? कृष्ण के, वृंदावन के नित्य लीला में प्रविष्ट कर चुके थे। और प्रभुपाद जी दर्शन कर रहे हैं कि कृष्ण अब ग्वाल बालों के साथ चल रहे हैं, रत्रक पत्रक उनको तांबुल खिलाया है, अब कृष्ण असुर को मार दिया है और सब भी बैठे हैं और कृष्ण अब सबके पोटली से खा रहा है। और कृष्ण कहा कि प्रभुपाद जी ने कहा कि अब कृष्ण जो है अपने घर से सुंदर लड्डू लाए हैं और ये लड्डू माँ यशोदा ने खास बनाया है और साथ साथ लड्डू के साथ साथ उनके पास कचौरी भी है, ये कचौरी भी स्पेशल है। आज मैं रुक नहीं सकता हूँ, मुझे वो कचौरी चाहिए कृष्ण के हाथ में। कृष्ण ये लड्डू सब ग्वालों को दे रहा है, मुझे भी चाहिए, मैं वो लड्डू खाने के लिए अभी इसी वक्त जा रहा हूँ, कचौरी खाने के लिए जा रहा हूँ। तो जितने भी उनके साथ जो शिष्य थे वे थोड़े से दुखी हो गए। प्रभुपाद जी सारे शिष्यों का दर्शन किए, फिर प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है एक शर्त पे मैं नहीं जाऊंगा, अगर मुझे आप कचौरी और लड्डू खिलाओगे तो मैं नहीं जाऊंगा। तब सारे शिष्यों ने कहा प्रभुपाद जी पर हमें तो कचौरी और लड्डू बनाना नहीं आता है। तब प्रभुपाद जी ने कहा कोई बात नहीं मैं आपको सिखाऊंगा। और प्रभुपाद जी उनको सिखाते हैं कैसे कचौरी और लड्डू बनाना है। और कहा जो मुझे कचौरी और लड्डू खिलाएगा उसके ऊपर मेरा हमेशा आशीर्वाद रहेगा। बोलिए श्रील प्रभुपाद जी की। जो मुझे कचौरी और लड्डू खिलाएगा मैं उनसे सदैव प्रसन्न रहूंगा और उनके ऊपर मेरा अहेतु की कृपा आशीर्वाद के रूप में रहेगा। अब प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने के लिए प्रभुपाद जी कहते हैं अलग अलग जगह में अलग अलग बातें बताएं। आप मेरे ग्रंथों का अगर वितरण करोगे, आप अगर मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो आप मेरे ग्रंथों का वितरण कीजिए। तो आप में से कितने भक्त ग्रंथों का वितरण करते हैं? रोज के दिन रोज केवल एक हाथ ऊपर उठा है, वो रोज ग्रंथ वितरण करते हैं। ऑफिस से आते हैं दयाचंद्र प्रभु और ग्रंथ वितरण करते हैं। साल में एक महीने ग्रंथ वितरण कौन करते हैं? कुछ हाथ होते हैं, मैराथन के समय हम लोग ग्रंथ वितरण करते हैं। बाकी दिन अगर प्रभुपाद जी का कृपा चाहिए तो क्या करोगे? और ग्रंथ वितरण करते करते कितना परिश्रम होता है। तो प्रभुपाद जी ने कहा ग्रंथ वितरण करो तो मैं प्रसन्न रहूंगा। ये एक जगह पे बताए, एक जगह पे बताते हैं अगर कोई बहुत ही अच्छी तरह से जप करे तो मैं उनसे प्रसन्न रहूंगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और हम जानते हैं हमारा जप कितना अच्छा है ना। मैं अपने बारे में कह रहा हूं, आप सब बड़े चढ़े वैष्णव वैष्णवी हैं, आप सबका जप बहुत ही अच्छा है। आपके बारे में नहीं, आपके जप के बारे में मैं कहूं तो निंदा हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। मैं अपने बारे में कहता हूं अपना जप का इतना अच्छा है तो हमारे जप से कैसे प्रभुपाद जी प्रसन्न होंगे? जप करना ग्रंथ वितरण करना, फिर प्रभुपाद जी कहते हैं अगर आप अच्छे भक्त बनोगे तो मैं प्रसन्न रहूंगा। ये एक जगह पे कहते हैं। तो हम कितने अच्छे भक्त हैं ये हम जानते हैं, आपके बारे में नहीं। आप लोग निश्चिंत रहे, आप सब अच्छे भक्त हैं। हम अपने बारे में, हम अपने बारे में कहेंगे औरों के बारे में कहेंगे तो ये अपराध हो जाएगा, इसलिए हम
अपने बारे में, तो हम कितने अच्छे भक्त हैं हम जानते हैं, हम कितने अच्छे जप करते हैं हम जानते हैं, हम कितने ग्रंथ का वितरण करते हैं ये हम जानते हैं, क्या इससे प्रभुपाद जी प्रसन्न होंगे या नहीं ये हमें पता नहीं, पर प्रभुपाद जी कहते हैं अगर कोई लड्डू और कचौरी मुझे खिलाए तो मैं उनसे हमेशा प्रसन्न रहूंगा और मेरा कृपा उनके ऊपर सदा रहेगा। तो ये प्रभुपाद जी का एक सुंदर लीला है, ये प्रभुपाद जी नित्य लीला में प्रविष्ट करके अपने शिष्यों से कहते हैं अगर आप कचौरी लड्डू खिलाओ तो मैं यहीं पे रहूंगा। तो प्रभुपाद जी से कहा कि ठीक है हम खिलाएंगे। तो सुबह के समय कृष्ण जो है बाल बालों के साथ जाते हैं और यहाँ पे वत्स के साथ जाते जाते यहाँ पे लेकर तो कृष्ण और बलराम वत्स पालक बन गए, वत्सों का देखभाल करते हैं, उनको चराते हैं। और कैसे उसका देखभाल करते हैं, सर्वलोक एक पालको, कृष्ण जो है सर्वलोक एक पालको, सारे लोक के एक मालक एक की मालिक है, वो कौन है सबका मालिक एक, कहते हैं ना सबका मालिक एक, वो कौन है सर्वलोक एक पालको, इतने सारे जीव हैं, इतने सारे प्राणियां हैं, इतने सारे पक्षियां हैं। एक बार एक माँ थी वृद्ध थी, गांव में मेला लग गया था, जो खाली स्थान था वो भर गया था और देखते ही देखते इतने सारे दुकानदार आ गए, इतने सारे गांव वाले खरीदने आए थे, तो वो माँ रोने लगी। तो उसका बेटा बोला माँ रो क्यों रही है, बोला कि इतने सारे लोग हैं, इतने सारे दुकानदार और इतने सारे खरीदने के लिए लोग आ चुके हैं, इन सब ये लोग कहाँ पे रहेंगे और क्या खाएंगे, इनके लिए रहने का सोने का जगह कौन देगा, ऐसे करके रो रहे थे। वो थोड़ी भावुक थी, पर उनका बेटा जो था बुद्धिमान था, वो हंसने लगा, बोला माँ चिंता मत कर, शाम हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। बोला नहीं नहीं, इतने सारे लोग क्या खाएंगे कहाँ सोएंगे, उसके अंदर भय होने लग गया। तो उसका बेटा हंसने लगा, चिंता मत कर। और देखा शाम जैसे हो गया तो पूरा मैदान खाली हो गया। प्रभुपाद जी ये छोटा सा उपाख्यान कहते हुए कहते हैं कि इस प्रकार से इस संसार में इतने सारे जीव है, कभी कभी कुछ लोग डर जाते हैं भविष्य में क्या होगा, इतने सारे जीवों का क्या होगा, हम सब का क्या होगा, चिंता करने लग जाते हैं। पर कहते हैं कि कृष्ण इज इन कंट्रोल, कृष्ण सब कुछ भगवान के नियंत्रण में है और कृष्ण सबका पालन कर रहे हैं, किसी हमको अलग से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इतने सारे चींटियों का क्या होगा, इतने सारे चिड़ियों का क्या होगा, इतने सारे प्राणियों का क्या होगा, अलग से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमें चिंतन करना है, यही करना है। चिंतन क्या करना है, भगवान का भजन करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। अपने आप पूरे जगत का पालन हो रहा है अपने आप। हमारा क्या भय है, हमारा क्या भय है कि अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमारा घर कैसा चलेगा, ये एक भय है। रोटी कपड़ा मकान के लिए हम मेहनत करते हैं, अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ऐसा एक भय। एक अज्ञान के कारण एक अंधा दौड़ निकल चुका है, सभी इसी पे लगे हैं, रोटी कपड़ा मकान हमें कहां से मिलेगा, रोटी कपड़ा मकान कौन देगा, कौन देगा, कौन देगा, भय उत्पन्न हो गया, एक अंधा दौड़ चल रहा है। देखो वो इतना अच्छा पढ़ाई कर रहा है, देखो वो इतना नौकरी कर रहा है, वो इतना मेहनत करके बड़ा बन गया है, तू भी बन, माता पिता बोलते हैं, तो फिर हम भी लग जाते हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि देखिए हमारा ये विचार है कि अगर हम नौकरी करेंगे बिजनेस करेंगे तो ही हमारा घर चलेगा, हम जिएंगे, नहीं तो हमारा क्या होगा, ये एक विचार है, एक भय है अज्ञान के कारण। हम ये नहीं कहना चाहते कि आज से अभी से आप सब कुछ छोड़ दो, हरे कृष्णा करो, हरे कृष्ण करो तो सही है, पर हम ये नहीं कहते हैं। पर विचार कीजिए, सोचिए, जानने का प्रयास कीजिए, मनुष्य को छोड़कर और कितने सारे जीव हैं इस जगत में। आध्यात्मिक जगत में तो वो सब भगवान की सेवा में लगे, कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं। भौतिक जगत में जो भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं, चींटी से लेकर हाथी तक कोई भजन नहीं करता है, कोई मंगल आरती नहीं, कोई तिलक लगा के कंठी माला लगा के चींटी और हाथी घूमते नहीं है, वो भक्त भी नहीं है, फिर भी वो खाते पीते मस्त है। हम मनुष्य इतने भयभीत हो गए हैं, ये सोच रहे हैं कि जब तक मैं नौकरी नहीं करूंगा या पैसा नहीं कमाऊंगा, रोटी कपड़ा मकान का क्या कहां से आएगा। भय अंदर आ गया है। चींटी से लेके हाथी तक वो तो भक्ति तो नहीं कर रहे हैं, पर चींटी से लेके हाथी तक वो नौकरी भी नहीं कर रहे हैं। आप नहीं देखते हो कि चींटी लोग लाइन में जाते हैं और कुछ काम करते हैं, नहीं, ऑफिस में जाते हैं कुछ लिखते हैं, नहीं। या हाथी ट्रेन पकड़ के विरार से चर्च गेट आते हैं और कंप्यूटर में बैठ के या तोता कॉल सेंटर में बैठ के काम कर रहे हैं। आपने नहीं देखा होगा और करेंगे भी नहीं। फिर भी चींटी को तो खिलाते ही हैं, हाथी को तीन बार खिलाते हैं, 300 300 300 किलो, तीन बार 900 किलो। कम से कम ये देखकर हमको विश्वास हो जाना चाहिए कि है कोई पालन करता जो सबको देख रहा है, तो हमको क्यों नहीं देखेगा। विश्वास होना चाहिए। और अगर हम भक्ति करेंगे, ये तो भक्ति भी नहीं कर रहे, अगर हम भक्ति करेंगे तो हम सबका पालन और भी विशेष रूप में करेंगे। हमें केवल भजन करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। इस प्रकार से सर्व लोक एक पालको, सारे लोगों का देखभाल करते हैं। ठीक है, मुझसे बिछड़कर ये अलग अलग ब्रह्मांड में ये जीव आया है, फिर भी जिस वक्त वो जीव आता है, जीव के लिए रहने का स्थान और खाने का आहार देते हैं, और मनुष्य बन जाते हैं तो कपड़े भी देते हैं। ऐसा पालन करते, इतना सुंदर व्यवस्था, हवा का पानी का इतना सुंदर व्यवस्था, क्या मैनेजमेंट है, सुपर मैनेजमेंट भगवान का। पानी का व्यवस्था, हवा का व्यवस्था, एवरीथिंग, सब लोक एक पालक हो। इस प्रकार से जिस प्रकार से कृष्ण सारे लोगों का पालन करते हैं, उसी प्रकार से आज इस वृंदावन लीला में वत्सों का पालन कर रहे हैं और प्रातः काल रोज गोचारण करने निकलते हैं। गोचारण करने जब निकलते हैं तो बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। मंडली भद्र उनके साथ आगे आगे निकलते हैं, वो उनसे बड़े हैं उम्र में, बलराम जी जैसे हैं, वो सीनियर हैं। मंडली भद्र दिखने में थोड़ा काला सा है और वो पीले रंग का वस्त्र डालते हैं और आगे आगे निकलते हैं। श्रीदाम जो है वो भी नीले रंग का है, बहुत ही नीले रंग का है, और वो भी पीला और या कभी कभी हरा वस्त्र डालता है, और भैंस के जो सिंह है उसका एक बोंपू बनाता है और फू फू करके नाचते गाते रहता है और कृष्ण को चुनौती देता है और उनसे कुश्ती खेलता है। सुबल जो है कृष्ण के सबसे घनिष्ठ मित्र है, उनका रंग जो है राधा रानी के रंग जैसा ही है और पीतांबर वस्त्र धारण करते हैं और कृष्ण के साथ हमेशा रहता है। और उज्जवल नाम का और एक सखा है, वो भी कृष्ण के उम्र का ही है, कृष्ण जैसे ही वो भी नीले रंग का है, पर वो जो है नारंगी रंग का कपड़ा पहनता है और कृष्ण के साथ हमेशा रहता है। ये सब साथ में खेलते कूदते मस्ती करते रहते हैं और आनंद में रहते हैं। और एक दिन की बात है, वत्सासुर आया था। वत्सासुर की कथा आप लोग ने पिछले बार सुना होगा। संक्षेप में, एक असुर था, वो वत्स बनकर आया था और वो सोचा कि कृष्ण जो है प्रसिद्ध है, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, वे अभी तक गाय का देखभाल नहीं कर रहे हैं फिर भी प्रसिद्ध है, गो बाल हिताय, गाय का वो हित करते हैं करके। तो वत्स बनकर आए थे वो सोचा कि वत्स बनेंगे, अगर वो असुर बन के आएगा तो कृष्ण मार देंगे जैसे पुतना और त्रिनावत को मार दिया था, अब मैं असुर नहीं वत्स बनकर आऊंगा तो वो मेरा देखभाल करेगा। तो वत्स बनकर आया था पर कृष्ण ने उसे मार दिया। फिर सारे ग्वाल बालों ने कहा हमें भूख लगा है, तो खाने लगे। पर ये वत्स जो है, वत्सासुर जो है, इसके बारे में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर एक सुंदर बात बताते हैं। कहते हैं कि ये वत्सासुर जो एक असुर है, ये हमारे साधकों के अंदर, साधकों का अर्थ होते हैं नवसिक्या भक्तों के अंदर एक अनर्थ होता है। हम जब भक्ति में आते हैं तो हमारे अंदर दैवी गुण भी होता है, आसुरी गुण भी होता है, एक आसुरी प्रवृत्ति होता है जिसका वर्णन 16वें अध्याय में भगवद गीता में भगवान कृष्ण करते हैं। दैवी और आसुरी गुण को लेते हैं और भक्ति करने से आसुरी गुण नष्ट हो जाते हैं। तो एक प्रवृत्ति है पूतना, यानी कि एक प्रवृत्ति है कि हम नए भक्त रहते हैं तो ठग गुरु के प्रति भी आकर्षित हो जाते हैं, ढोंगी गुरु के प्रति आकर्षित होते हैं, एक प्रवृत्ति होता है। त्रिनावत का अर्थ होता है जो बहुत ही भौतिक शिक्षा को प्राप्त करके घमंडी हो जाते हैं, ये एक अनर्थ होता है। और साथ ही ये जो वत्स है, एक बच्चा बनकर आया था, बछड़े बनकर आया था। कभी कभी कुछ नए नवसिक्के भक्तों के अंदर एक प्रवृत्ति रहता है, वो बच्चे जैसे हरकत करते हैं, दूसरे भक्तों का चोटी को खींच लेते हैं, उसके कपड़े को कुछ समय के लिए चुरा लेते हैं, मस्ती करने का बच्चों के अंदर एक बचपना रहता है, मस्ती करने का वो कुछ भक्तों के अंदर वो प्रवृत्ति रहता है, दूसरे के आईपॉड को, दूसरे के क्या बोलते हैं, मोबाइल को खींचते हैं और उसमें गेम्स खेलते हैं, बचपना बोलते हैं ना। और कोई सीनियर नहीं है तो जोर से चिल्ला के हल्ला गुल्ला करते हैं, बचपना होता है ना नवसिक्या भक्तों में। तो ये बचपना जो है एक प्रवृत्ति है। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं अगर वत्सासुर का ये प्रसंग को अगर हम अच्छी तरह से सुनेंगे तो वो प्रवृत्ति हमारा नष्ट हो जाएगा। ये वत्सासुर जो है एक असुर है, और देखा जाए वृंदावन आध्यात्मिक जगत है, आध्यात्मिक जगत में असुरों का कोई स्थान नहीं है। फिर भी कृष्ण के लीला को और पोषण पोषित करने के लिए कृष्ण का जो लीला शक्ति है वे कभी कभी असुरों को बेचते हैं। पर जितने भी असुर हैं, चाहे वो पुतना हो, त्रिनावत हो या सक्तासुर हो, ये सब असुर जो हैं पिछले जीवन में किसी संत के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त किए हैं या श्राप प्राप्त किए हैं। तो जैसे प्रहलाद महाराज कहते हैं, जैसे सातवें स्कंद में वर्णन आता है कि कृष्ण अपने भक्तों की वाणी को सत्य करते हैं, वैसे ही कृष्ण इन ऋषियों के आशीर्वाद या श्राप को भी ध्यान में रखते हैं और उनको वृंदावन में स्थान देते हैं। तो ये वत्सासुर जो है एक असुर था, मूर नाम का एक असुर था, उनका बेटा था, ये मुरु नाम का जो असुर था उसका बेटा, इनका नाम था प्रमिला नाम का एक असुर। ये गर्ग संहिता में एक कथा आती है। ये प्रमिला नाम का जो असुर था इतना शक्तिशाली था कि देवताओं को एक बार हरा दिया था, और हराने के बाद एक दिन वशिष्ठ मुनि जो कि प्रभु श्री राम जी के कुल गुरु हुए सूर्यवंशी, हाँ कुल के गुरु हुए, वशिष्ठ मुनि के आश्रम में आए, वहां पे एक गाय को देखे, सुरभि गाय को देखे, उस गाय का नाम था नंदिनी। ये नंदिनी गाय के पास आया और उससे आकर्षित होके ये असुर क्या किया, इस गाय को अगर मैं लेकर जाऊंगा, ऐसे विचार किया। पर वो जानते हैं कि विश्वामित्र का जो हाल हो गया वैसे मुझे नहीं होना। तो ब्राह्मण के रूप में आते हैं, क्षत्रिय के रूप में आए तो वशिष्ठ मुनि उसे नष्ट कर देंगे, पर वो ब्राह्मण बन के आया और कहा कि मैं बहुत ही गरीब ब्राह्मण हूं, मुझे थोड़ा सा भीख दीजिए, जीने के लिए मुझे कुछ चाहिए तो गाय दीजिए, गोदान दीजिए, वशिष्ठ मुनि से कहा। और वशिष्ठ मुनि जैसे ही नजदीक गए तो गाय नंदिनी को लेकर गए तो नंदिनी ने इशारा किया कि जो है ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है, ये एक असुर है और ये मूर नाम का जो असुर है उनका बेटा प्रमिला है, प्रमिला असुर है। तब वशिष्ठ मुनि क्रोधित होते हैं, बोला तू ब्राह्मण का ढोंग करके गाय लेने आया है, मैं तुम्हें श्रापित कर देता हूं, तू गाय लेने आया तो तू वत्स बन जाओ, और उसे श्रापित कर दिया, वत्स बन गए। तो वो रोने लगा और वैष्णव जो है बड़ा दयालु होते हैं तो उनका हृदय पिघल गया, बोला मैं फिर से गलती नहीं करूंगा, फिर से मैं ढोंग नहीं रचाऊंगा, क्षमा करो क्षमा करो। तब वशिष्ठ मुनि ने कहा कि ठीक है, अभी आप वत्सासुर बन गए हो पर भगवान कृष्ण के हाथों से आप मारे जाओगे, आपका उद्धार हो जाएगा और भगवत धाम को आप प्राप्त करोगे, ये मेरा आशीर्वाद है। तो इस प्रकार से वशिष्ठ मुनि का श्राप प्राप्त करते अनेक सालों तक अनेक युगों तक वे वत्सासुर बने, और कृष्ण जब वृंदावन में आए यही वत्सासुर असुर जो है वत्स बनकर आए और कृष्ण के द्वारे वे मारे गए थे और कृष्ण उसे मारे, और अब सारे बछड़े सारे बछड़ों को लेकर कृष्ण खेल रहे हैं और सारे जितने भी ग्वाल बाल है सुबह के समय एक साथ बैठकर क्या खा रहे हैं, पूरी कचौरी आमरस इत्यादि ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सप्रात प्रातः के समय में गोचारण करते हैं और भोजन करके निकलते हैं। हमारा जो सुंदर दिनचर्या है जो प्रभुपाद जी ने हमें दिया है, प्रातः काल कितने बजे हम लोग मंगल आरती करते हैं, 4:30 बजे, ये समय होता है जब कृष्ण का पहला आरती होता है ब्रज में, और कृष्ण का श्रृंगार माँ यशोदा अच्छी तरह से करती है। ये करते करते समय लगभग 7:15 होता है, तब हमारा यहाँ मंदिर में क्या होता है, श्रृंगार आरती। और कृष्ण प्रातः का जो श्रृंगार करके खेलने जाते हैं अपने ग्वाल बालों के साथ, उस वक्त हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, गुरु वंदना, गुरु वंदना करते, और उसमें क्या करते हैं हम लोग, नाचते और गाते रहते हैं। जब गुरु वंदना का समय रहता है तो जोर जोर से नाचते हैं, जोर जोर से कीर्तन करते हैं, पर जब मंगल आरती होता है तब हम लोग धीरे धीरे करते हैं, क्योंकि कृष्ण जो है अभी उठ रहे हैं। इसीलिए कभी कभी कोई मंगल आरती में, प्रभुपाद जी एक बार मायापुर में थे तो कुछ भक्त लोग जोर जोर से कीर्तन कर रहे थे, हरे कृष्णा कीर्तन कर रहे थे मंगल आरती के, तो प्रभुपाद जी ने रोका, सबसे कहा आप लोग का मन विचलित है इसलिए जोर जोर से आप कीर्तन कर रहे हो, शांत हो जाइए, कृष्ण अब जग रहे हैं। मंगल आरती का जो कीर्तन है बड़ा मधुर और धीरे होना चाहिए, तो लोग थोड़ा शांत हो गए। पर वही जब गुरु वंदना जब आता है तो सबको बोलते हैं और जोर से नाचो और जोर से नाचो, ऐसा कहता है। तो कृष्ण का गुरु वंदना हो जाता है तब भगवान का पट बंद हो जाता है, तब कृष्ण क्या करते हैं, भगवान का ये कौन सा भोग है, ये प्रातः का ब्रेकफास्ट है। इस वक्त कृष्ण जो है नंद ग्राम में नंद भवन में अपना सुबह का भोजन करते हैं, उनके सामने बलराम जी बैठते हैं, मधुमंगल बैठते हैं, श्रीदाम बैठते हैं, सुबल बैठते हैं, सब लोग एक टेबल में बैठते हैं, एक साथ बैठते हैं गोल और प्रातः का भोग लेते हैं। ये समय कितना है, 8:00 और 8:30 के बीच में प्रातः का ये नित्य लीला है, और इस नित्य लीला में प्रविष्ट करने के लिए हम सबको आमंत्रित किया जाता है। अगर हम इस कृष्ण भक्ति को बड़े गंभीरता से लेंगे तो हमें उस नित्य लीला में प्रविष्ट करने का सुअवसर प्राप्त हो जाएगा, और कृष्ण के साथ हम भी सुबह का कचौरी और लड्डू खा सकते हैं और खा के बड़े भाव विभोर और आनंद में रह सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उस लीला में जाने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना होगा, मेहनत क्या है, उत्साह के साथ, निश्चय के साथ, धैर्य के साथ भगवान का भक्ति हमें करना है। क्या हम सब उस लीला में जाने के लिए तैयार है? डर गए, मेरा क्या होगा, घर का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, सबका देखभाल करेंगे, सब लोग के एक पाल का। क्या हम सब तैयार है उस लीला में जाने के लिए, आनंद को प्राप्त करने के लिए? या यही अच्छा है, थोड़ा सुख थोड़ा दुख, 50-50, थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा, ये ठीक है? नहीं, हमको खट्टा भी नहीं चाहिए, मीठा भी नहीं चाहिए, हमको आनंद ही आनंद चाहिए, पूरा सुख चाहिए। तो उसके लिए थोड़ा मेहनत करना होगा। मेहनत क्या है? भक्तों के संग में रहना होगा, गुरुपाद आश्रय लेना होगा, सेवा करना होगा और अच्छी तरह से जप करना होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये टिकट है तो उस शो में जा सकते हैं, उस लीला में प्रविष्ट कर सकते हैं। सब तैयार है टिकट लेने के लिए? तो देना ही पड़ेगा, ठीक है? हरे कृष्णा, बहुत धन्यवाद। अब प्रातः का भोजन करने का समय हो गया है, कृष्ण तो कर चुके हैं, उनका उच्चिष्ट खाने का समय हो गया। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की, गौर हरि प्रेमानंदे।
चालू नहीं किया।